कैप्टन ज़ैन इकबाल ईशानी के इतने समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा था और वो ईशानी को लेकर आर्मी कैंप की तरफ बढ़ रहा था। ईशानी मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी कि ज़ैन उसके बात को समझे, वरना एक बार अगर वो आर्मी के बीच फंस गई तो उसका वापस इंडिया जाना लगभग नामुमकिन था। जंगलों को पार करके ज़ैन और ईशानी आदमी कैंप से थोड़ा ही दूरी पर थे कि तभी साद और आदम वहां पर आए। ईशानी को इस तरह गन पॉइंट पर देखकर साद ने हैरानी से कहा, सर, आप इस तरह इस खातून को कहां लेकर जा रहे हैं? ये क्या कोई क्रिमिनल है जो आपने गन पॉइंट कर रखी है? क्रिमिनल नहीं है, लेकिन इंडिया से है, और क्या पता कोई जासूस हो। इसकी सच्चाई तो अब वहीं पर जाकर पता चलेगी, ज़ैन ने सख्त आवाज में कहा। ईशानी अब अपनी सफाई नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही ज़ैन को सब कुछ समझा चुकी थी। वो उसकी मानने को तैयार नहीं था। ज़ैन की बात सुनकर आदम ने हल्के तरीके से कहा, इंडिया से है इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि कोई जासूस या क्रिमिनल हो। बेचारी हालातों की मारी भी हो सकती है सर। चलो, किसी को तो यहाँ थोड़ी बहुत अक्ल है, ईशानी ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकती हूँ। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, गलती से यहाँ आ गई। मुझे खुद नहीं पता कैसे आई हूँ, फिर भी ये मेरी सुनने को तैयार तक नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर एतबार नहीं है, ज़ैन ने कंधे उचकाकर कहा। पहले भी मैंने एक लड़की की मदद की थी और वो जासूस निकली। तुम्हारी तरह ही मासूम दिखती थी। मैंने तुम्हें समझा दिया है कि तुम अपने सबूत अब हमारे जनरल के सामने ही पेश करना। उन्हें तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आई तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। ज़ैन की बात सुनकर साद जल्दी से बोला, ये आप क्या करने की सोच रहे हैं सर? आप अच्छे से जानते हैं जनरल कितने सख्त मिजाज के हैं। अगर ये बेगुनाह भी हुई तो वो इन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ साद, बिल्कुल सच कह रहा है। हमें पहले इससे बात करके इसकी बात को सुनना चाहिए। ऐसे इस तरह हम इसे नहीं सुपुर्द कर सकते हैं। अगर ये सच में बेगुनाह हुई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसकी बात सुन लीजिए सर, नेकी करने का सवाब मिलेगा, आदम ने साद की बात पर सहमति जताते हुए कहा। ईशानी जानती थी कि ज़ैन उनकी बातों में नहीं आने वाला था। उसने उसकी तक नहीं सुनी थी। ईशानी ने लाचारी से कहा, तुम लोग बेवजह से ये सब बोल रहे हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी बाकी पाकिस्तान आर्मी जैसा ही है। ईशानी की बात सुनकर साद ने सिर हिलाकर कहा, माशाल्लाह से गलतफहमियां तो खूब पनप रही है हमारे दरमियाँ। हाँ जनाब, हम वैसे भी नहीं हैं जैसा आप हमें समझती हैं। हर पाकिस्तानी हिंदुस्तानी पर जुल्म नहीं ढाता है, साद ने सिर हिलाकर कहा। हाँ तो हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए नहीं आता, वो गलती से फंस भी सकता है। लेकिन तुम लोग सुनो तब ना, ईशानी चिढ़कर बोली। ज़ैन उनकी बातों को सुन रहा था। कोई भी फैसला लेने से पहले उसने साद और आदम की आंखों में देखा। वो आंखों ही आंखों में उसे यही दरख्वास्त कर रहे थे कि ईशानी को आर्मी के पास सौंपने से पहले एक बार सही गलत की खोजबीन कर लेनी चाहिए। ज़ैन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, घर पहुंचने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का वक्त होगा। उस 30 मिनट में अगर तुमने हम तीनों को कन्विंस कर लिया कि तुम कोई जासूस नहीं हो, तो हम तुम्हें वापस पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। थैंक यू सो मच। 30 मिनट क्या, मैं तुम तीनों को 10 मिनट में कन्विंस कर लूंगी, ईशानी ने जवाब दिया और जल्दी से दूसरी तरफ पलट गई। वो तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। ज़ैन, साद और आदम वहीं पर खड़े थे। ईशानी उनकी तरफ पलटी और तेज आवाज में बोली, अरे जल्दी आओ, तुम्हारे लिए ये जगह फैमिलियर होगी, लेकिन मुझे उस कैंप को देखकर बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात सामने नरक हो। हाँ आ रहे हैं, ज़ैन, साद और आदम एक साथ बोले। वो तीनों धीमी कदमों से चलते हुए ईशानी के पीछे आ रहे थे। साद ने चलते हुए धीमी आवाज में कहा, वैसे मानना पड़ेगा ये काफी खूबसूरत है। खूबसूरत लड़कियां झूठ नहीं बोलती, मैंने अपनी अम्मी से सुना है। उसी अम्मी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो लड़की हमारे कुछ नहीं लगती? गैर औरत को गलत नजरों से देखना हराम होता है, दोजख की आग में जलोगे तुम, आदम ने जवाब दिया, जिस पर साद चुप हो गया। उन दोनों की बातें ज़ैन के कानों में पड़ी तो वो उनकी तरफ पलट कर बोला, तुम्हारी उम्र की ही होगी तो छोटी बहन समझो या बड़ी बहन, पर अदब से पेश आना। ऐसे ही हमारे बारे में वो बहुत गलत सोच रही है। अगर उसकी नीयत साफ निकली तो फिर हमारी इमेज खराब हो जाएगी। साद और आदम ने तुरंत उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही देर में वो वापस घर पहुंच चुके थे। वहां आते ही ईशानी ने उनसे कहा, लाओ मुझे अपना मोबाइल दो ताकि मैं अपने हस्बैंड की तुमसे बात करवा सकूं। तुम्हें सब सच बता देगा कि मैं कौन हूं। बेवकूफ समझाया आपने हमें, ज़ैन उसे घूरते हुए बोला। अगर हमने इंडिया में कहीं भी कॉल किया तो हमारा कॉल ट्रेस होगा और तुरंत यहाँ आर्मी आ जाएगी। और कैसे यकीन कर लें कि कॉल के दूसरी तरफ आपका शौहर ही होगा? कोई और तरीका बताइए, वरना फिर से आर्मी कैंप चलने के लिए तैयार हो जाइए, ईशानी ने तुरंत ना में सिर हिलाकर कहा। नहीं नहीं, मैं प्रूफ कर दूंगी। इतनी दूर वैसे भी चलकर वापस नहीं चला जाएगा। उनके घर से आर्मी कैंप लगी दूर था और ईशानी थक गई थी। वो बैठी और कुछ पल रुककर बोली, अच्छा एक काम कीजिए, मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपको इंटरनेट पर अपनी फोटो दिखा दूंगी और अपने पति की भी, तब तो आपको मुझ पर यकीन हो जाएगा ना। यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, और तरीका है तो बताइए, वरना चलते हैं वापस आर्मी कैंप। ज़ैन सख्त आवाज में बोला, जिस परेशानी ने बच्चों की तरह मुंह बना लिया। अजीब मुसीबत है, ना इंटरनेट चलता है और ना ही कॉल कर सकते हैं, तो कैसे प्रूफ करूं? मैं कौन सा अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर घूमती हूं? अगर वो भी साथ होता तो भी तुम लोग यकीन नहीं करते, ईशानी ने इरिटेट होकर जवाब दिया। वो तो आप डिसाइड करेंगी ना कि आपको कैसे अपनी सच्चाई साबित करनी है। आप ही थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ, तो कीजिए प्रूफ, ज़ैन ने भौंय उठाकर कहा। फिर उसने घड़ी की तरफ इशारा करके आगे कहा, आपको जो टाइम दिया था उसमें 10 मिनट बीत चुके हैं, अब सोच लीजिए 20 मिनट में आप साबित कर पाएंगी या नहीं। ईशानी ने लाचारी से हाँ में सिर हिला दिया। उसने साद और आदम की तरफ देखा, जो उस पर यकीन तो करना चाहते थे पर साथ ही देश की सुरक्षा के आगे कोई खतरा भी नहीं मोल लेना चाहते थे। ईशानी सोचते हुए चहलकदमी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ आलिया के घर में विक्रांत खुराना और माया खुराना बैठे हुए थे। विक्रांत के सामने फाइलों का ढेर पड़ा हुआ था। चेहरे से ही वो काफी इरिटेटेड नजर आ रहा था। उसने एक फाइल पढ़ते हुए माया की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, अब समझ आ रहा होगा आपको कि मैं रुद्राक्ष को अपने साथ क्यों रखना चाहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन सब प्रोजेक्ट पर वो काम करता था और अब सारे मेरे सिर पर आकर बैठ गए हैं। अगर इतना ही डर था तो तुम्हें उनका एक्सीडेंट नहीं करवाना चाहिए था, माया ने बेपरवाही से कहा। तो विक्रांत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। विक्रांत ने ही रुद्री और ईशानी का एक्सीडेंट कराया था, इस बारे में उनके घर में किसी को पता नहीं था। विक्रांत के चेहरे के भावों को देखकर माया ने भौंय चढ़ाकर कहा, हमारी तरह ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, हमें सब पता है, हमने उस दिन तुम्हारी बातें सुन ली थी।
अगर पता चल भी गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार रास्ते के कांटे को हटाना पड़ता है, विक्रांत ने जवाब दिया और फिर से फाइल पढ़ने लगा। कुछ पल रुककर उसने माया की तरफ देखकर आंखें छोटी करके कहा, आप एक्सीडेंट के बारे में जानती हैं, इसका मतलब ईशानी के साथ आपने ही कुछ किया होगा, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है, आप ही सबक सिखाना चाहती थी ना उसे। हाँ, हमने ही उसे एक्सीडेंट के बाद किडनैप करवाया था, उसे ज्यादा चोटें भी नहीं आई थी, पर बदकिस्मती से हमने उसे खो दिया है। हमारे अपने आदमी से बात हुई थी, जिस ट्रक में उसे लेकर जा रहे थे उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं वो लड़की सच में जिंदा है या नहीं, माया ने गहरी सांस लेकर कहा। माया और विक्रांत बातें कर रहे थे तभी उन्हें एंट्रेंस पर तालियां बजाने की आवाज सुनाई दी। वहां रुद्राक्ष खड़ा था जो उनकी बातें सुन चुका था। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था तो माया और विक्रांत ने भी अनजान बनने का दिखावा नहीं किया। रुद्राक्ष उनके पास तालियां बजाते हुए आकर बोला, बहुत अच्छे, यही उम्मीद थी मुझे आपसे। क्या बिगाड़ा था उस लड़की ने आपका जो आप दोनों उसकी जान के दुश्मन बन गए थे? अरे गलत तो उसके साथ हुआ था और ये सब आप पहले दिन से जानते थे, सब कुछ पता होने के बाद भी अपने आलिया का साथ दिया। हाँ तो क्या तुम्हारी तरह इस घर की बेटी को जेल के सलाखों के पीछे भेज देते? तुम पागल हो गए हो? हम नहीं, अगर प्यार का भूत इतना ही सिर पर सवार हो गया था तो अपनी पत्नी को समझाते, वो ठीक से हमारे हिसाब से रहती तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस घर की इज्जत भी बची रहती और तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल जाता। अब तुम्हारे लिए हम इतना सब कुछ तो भूल ही सकते हैं, माया ने सख्ती से जवाब दिया। उसे अभी तक अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। रुद्राक्ष ने माया की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर सर्द आवाज में बोला, आप भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, आखिरी मौका दे रहा हूं आपको, बता दीजिए ईशानी कहां पर है वरना बर्बाद कर दूंगा तुम सबको। अच्छा तो अब तुम बात करने की भी तमीज भूल गए हो, हमें तू तड़ाक से बात करोगे तुम? नहीं पता है उस लड़की का, और पता होता तब भी नहीं बताते, जाओ जो करना है कर लो, माया ने गुस्से में घूरते हुए जवाब दिया। ठीक है फिर जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, रुद्राक्ष ने सिर हिलाकर कहा और वहां से जाने लगा। रुद्राक्ष रुद्राक्ष, मैंने कहा अपने कदम यहीं पर रोक लो, हम बैठकर बात करते हैं, विक्रांत ने उसे पीछे से रोकने की कोशिश की लेकिन रुद्राक्ष नहीं रुका। उसके जाते ही विक्रांत ने गुस्से में माया की तरफ देखकर कहा, पागल हो गई थी क्या? आप बता देती उसे वो लड़की कहाँ पर है, आपकी वजह से इतना नुकसान हो गया, हम इसे बचा सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो लड़की कहाँ है, माया ने जवाब दिया। नहीं पता था तो झूठ भी बोल सकती थी, कौन सा उसे पता चलने वाला था, पर आप लोगों को कभी अकल से काम लेना आया ही नहीं, विक्रांत गुस्से में चिल्लाकर बोला और फिर वहां से बाहर जाने लगा। माया को उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ, वो धीरे से बोली, हमें पता है तुम खुद को बर्बाद नहीं होने दोगे, लेकिन रुद्राक्ष को इस तरह तड़पते हुए देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, वो लड़की जिंदा है या मर गई हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी फैमिली से उसका नाम हट गया वही हमारे लिए काफी है। माया अपने ईगो में ही खुश थी। एक नज़र उसने उन फाइल्स की तरफ देखा और फिर अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को दिया हुआ वक्त खत्म हो चुका था। आधे घंटे पूरे होते ही ज़ैन ने कहा, आपके इस तरह इधर उधर टहलने से आपकी बेगुनाही प्रूफ नहीं हुई, आपने सारा वक्त ऐसे ही ज़ाया कर दिया, चलिए चलते हैं, अब हम किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, लेकिन तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ईशानी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, ये आपकी प्रॉब्लम है, कि आपकी बेगुनाही इंटरनेट और कॉल पर डिपेंड करती है। आर्मी कैंप चल रही है आप, वहाँ आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा और कॉल करने का मौका भी। ज़हन ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपनी गन को फिर से लोड करके ईशानी की तरफ कर दिया। ईशानी के पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सात और आदम को बहुत बुरा लग रहा था। सात ने धीरे से कहा, सर आज कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रहे हैं? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है? बेचारी की कोई गलती नहीं है, हमारे पास ही इंटरनेट नहीं है। बुरा तो मुझे भी बहुत महसूस हो रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते, आदम ने कहा। ज़हन ईशानी के पास आया और फिर सात और आदम की तरफ देखकर बोला, उम्मीद है अब तुम दोनों को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं रही है। चुपचाप बैठकर घर की रखवाली करो, बाकी का मामला हम देख लेंगे। ईशानी ने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया था और एक बार फिर ज़हन उसे औसमी कैंप ले जाने वाला था। पाठ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।